नमस्ते, मैं आरफ हूँ। नाइन नार ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, जैक मायर्स की द टाओ ऑफ लीडरशिप, हार्मोनाइजिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड ह्यूमन क्रिएटिविटी इन द एआई एरा। एआई से बदलती संस्थाओं के लिए नेतृत्व और संगठनात्मक परिवर्तन पर केंद्रित एक विचार परक व्यावसायिक पुस्तक है। यह पारंपरिक प्रबंधन निर्देश पुस्तिका की तरह केवल प्रक्रियात्मक दक्षता या तकनीकी अपनाव पर नहीं टिकती। इसका उद्देश्य एआई की गति के बीच मानवीय रचनात्मकता, सहानुभूति, अंतर्ज्ञान और नैतिक विवेक को नेतृत्व के केंद्रीय तत्वों के रूप में स्थापित करना है। मायर्स ताओवादी दर्शन से 5 सिद्धांत लेते हैं, हार्मनी, स्टेबिलिटी, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और इंटेग्रिटी, और उन्हें आधुनिक संगठनों की चुनौतियों से जोड़ते हैं। पुस्तक का मूल तर्क है कि मशीन इंटेलिजेंस उपयोगी क्षमता बढ़ा सकती है, लेकिन वह अपने आप में दिशा, उद्देश्य या जिम्मेदार निर्णय नहीं दे सकती। इसलिए नेताओं को नियंत्रण, पदानुक्रम और विभागीय साइलों पर आधारित पुरानी व्यवस्थाओं से आगे बढ़ना होगा। पुस्तक विशेषतः उन लोगों के लिए प्रासंगिक है जो एआई को केवल सॉफ्टवेयर परियोजना नहीं बल्कि संस्कृति, कार्य डिजाइन और मानवीय संबंधों में बदलाव के रूप में समझना चाहते हैं। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, ताओवादी 5 सिद्धांतों को एआई नेतृत्व की निर्णय भाषा बनाना। पुस्तक की वैचारिक पहचान ताओवादी सिद्धांतों के आधुनिक प्रयोग में है। मायर्स हार्मनी को तकनीक और मानव क्षमता के बीच सही संबंध के रूप में देखते हैं, न कि तकनीक के अंधाधुंध विस्तार के रूप में। स्टेबिलिटी का अर्थ तेज बदलाव के बावजूद संगठन में भरोसेमंद दिशा, स्पष्ट मूल्यों और कार्यशील निरंतरता को बनाए रखना है। बैलेंस नेताओं को अल्पकालिक उत्पादकता और दीर्घकालिक मानवीय परिणामों दोनों को साथ देखने के लिए कहता है। फ्लेक्सिबिलिटी उस स्थिति में आवश्यक है जहां एआई के उपयोग, बाजार की अपेक्षाएं और कौशल आवश्यकताएं तेजी से बदलती हैं। इंटीग्रिटी इस पूरे ढांचे को नैतिक आधार देती है, विशेषकर पक्षपात, गोपनीयता और लोगों पर तकनीकी निर्णयों के प्रभाव जैसे प्रश्नों पर। यह ढांचा किसी एक एआई उपकरण को लागू करने की विधि नहीं देता, बल्कि निर्णय लेने का मानदंड प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए, किसी स्वचालन पहल को केवल लागत घटाने से नहीं आंका जाएगा, बल्कि उससे कर्मचारियों की भूमिका, ग्राहक अनुभव, जवाबदेही और सीखने की क्षमता पर पड़ने वाले असर से भी परखा जाएगा। इस तरह पुस्तक तथाकथित सॉफ्ट मूल्यों को व्यावसायिक विकल्प नहीं बल्कि अनिश्चित परिवेश में टिकाऊ निर्णयों की व्यावहारिक शर्त मानती है। दूसरा, एआई को मानव रचनात्मकता का सहयोगी मानने का तर्क मायर्स का केंद्रीय तर्क है कि एआई की गणनात्मक गति और पैटर्न पहचान का मूल्य तभी बूढ़ा होता है जब उसे मानवीय रचनात्मकता के साथ जोड़ा जाए। पुस्तक तकनीक को मानव नेतृत्व का विकल्प मानने के बजाय सहयोगी क्षमता के रूप में रखती है। मशीनें बड़ी मात्रा में सूचना को संसाधित कर सकती है, दोहराव वाले कार्यों को घटा सकती है और संभावित विकल्प सुझा सकती है, लेकिन किसी निर्णय का सामाजिक संदर्भ, उसके नैतिक परिणाम, लोगों की प्रेरणा और किसी नए विचार का सांस्कृतिक अर्थ समझना अभी भी नेतृत्व की मानवीय जिम्मेदारी है। मायर्स विशेष रूप से सहानुभूति, अंतर्ज्ञान और नैतिक तर्क को ऐसी क्षमताओं के रूप में रेखांकित करते हैं जिन्हें केवल दक्षता के पैमाने से नहीं मापा जा सकता। यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि संगठन अक्सर एआई निवेश को उत्पादकता, लागत और गति के संकेतकों से उचित ठहराते हैं। पुस्तक पूछती है कि यदि वही निवेश जिज्ञासा, विविध दृष्टिकोण और स्वतंत्र प्रयोग की जगह कम कर दे तो उसका दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा। इस दृष्टि से नेतृत्व का काम सही उत्तरों की घोषणा करना नहीं बल्कि ऐसी परिस्थितियां बनाना है जहां लोग एआई से मिली अंतर्दृष्टि को चुनौती दे सके, सुधार सके और जिम्मेदारी से उपयोग कर सके। यही सह निर्माण का आधार है। तीसरा, फ्यूजन फ्लो के जरिए विभागीय साइलो से पारस्परिक कार्य व्यवस्था तक। पुस्तक से जुड़ा फ्यूजन फ्लो मॉडल संगठनात्मक रूपांतरण को केवल नई तकनीक खरीदने की प्रक्रिया नहीं मानता। इसका लक्ष्य अलग अलग विभागों, डेटा प्रवाहों और निर्णय केंद्रों के बीच बने साइलो को कम करके सहयोग को अधिक तरल बनाना है। उपलब्ध विवरणों में इसके प्रमुख चरणों में उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में एआई और पार कार्यात्मक टीमों का पायलट प्रयोग, जटिल समस्याओं पर सहयोगी प्रयोग, वरिष्ठ और मध्य स्तरीय नेतृत्व का संरेखण तथा संस्कृति में सहानुभूति, समावेशन और सीखने को स्थायी बनाना शामिल है। इस क्रम की व्यावहारिकता उसके क्रमिक स्वरूप में है। पहले सीमित क्षेत्र में प्रयोग करने से संगठन तकनीकी उपयोगिता, जोखिम और लोगों की प्रतिक्रिया समझ सकता है। फिर अलग विशेषज्ञताओं वाले समूहों को साथ लाने से समस्या को केवल एक विभाग के लक्ष्य से नहीं देखा जाता। नेतृत्व संरेखण इसलिए जरूरी है कि परिवर्तन को शीर्ष स्तर पर समर्थन मिले और दैनिक प्रबंधन में भी उसे अपनाया जाए। अंतिम सांस्कृतिक चरण यह स्वीकार करता है कि नई प्रक्रिया तब तक नहीं टिकेगी जब तक कर्मचारी प्रश्न पूछने, गलती से सीखने और असहमति रखने में सुरक्षित महसूस न करें। फ्यूजन फ्लो का महत्व किसी कठोर सार्वभौमिक नुस्खे में नहीं बल्कि एआई अपनाव को संगठन डिजाइन, संयोग और संस्कृति से जोड़ने में है। चौथा, नियंत्रण केंद्रित पदानुक्रम के बदले संवर्धनकारी नेतृत्व। मायर्स पारंपरिक नेतृत्व की उस धारणा पर प्रश्न उठाते हैं जिसमें ऊपर से निर्देश, पूर्वानुमेय योजना और परिचालन नियंत्रण को प्रमुखता दी जाती है। उनका तर्क है कि ऐसी व्यवस्थाएं अपेक्षाकृत स्थिर औद्योगिक परिस्थितियों के लिए बनाई गई थी, जबकि एआई युग में परिवर्तन अक्सर गैर रेखीय और तेज है। इसलिए पुस्तक नेतृत्व को नियंत्रण से संवर्धन की ओर ले जाती है। संवर्धनकारी नेता हर निर्णय का स्वामी बनने के बजाय लोगों, विचारों और प्रयोगों के लिए उपयुक्त वातावरण बनाता है। इसमें भरोसा, जिज्ञासा, सुनने की क्षमता और सामूहिक बुद्धि का उपयोग शामिल है। यह विचार अनुशासन या जवाबदेही को अस्वीकार नहीं करता। इसके विपरीत इंटेग्रिटी और स्टेबिलिटी के माध्यम से यह स्पष्ट करता है कि लचीलेपन को साझा मानकों और जिम्मेदारियों के साथ रखना होगा। पुस्तक की आलोचना उन विरासतगत संगठनात्मक ढांचों की है जो दक्षता तो बढ़ा सकते हैं पर विभागों के बीच सीखने और रचनात्मक प्रतिक्रिया को बाधित करते हैं। एआई के संदर्भ में यह जोखिम और बढ़ता है क्योंकि स्वचालित प्रणालियां पुराने पूर्वाग्रह या सीमित लक्ष्यों को तेज गति से फैला सकती है। अतः नेताओं को आदेश देने के साथ साथ प्रश्न पूछने, विविध अनुभवों को शामिल करने और कर्मचारियों को तकनीकी बदलाव के सह निर्माता बनाने की जरूरत है। यह नेतृत्व को अधिकार की स्थिति से सांस्कृतिक जिम्मेदारी की प्रक्रिया में बदलता है। अंत में नेक्सस जेनरेशन और एआई युग में समावेशी संगठन संस्कृति। पुस्तक नेक्सस जेनरेशन शब्द के माध्यम से उन लोगों की ओर संकेत करती है जो 2020 के बाद जन्मे हैं और जिनका कार्य जीवन एआई तथा अत्यधिक जुड़ाव वाली दुनिया में विकसित होगा। यह अवधारणा केवल पीढ़ीगत लेबल नहीं है। इसके जरिए मायर्स नेतृत्व से पूछते हैं कि क्या आज के संगठन भविष्य की प्रतिभा के लिए रचनात्मकता, समानता, संबंध और सहभागिता को पर्याप्त महत्व देते हैं। पुस्तक का उत्तर संस्कृति पर केंद्रित है। यदि एआई अपनाओ केवल विशेषज्ञों, वरिष्ठ अधिकारियों या तकनीकी विभाग तक सीमित रहेगा तो वह अविश्वास और असमान पहुंच पैदा कर सकता है। इसके विपरीत मनोवैज्ञानिक सुरक्षा और समावेशन कर्मचारियों को यह कहने में सक्षम बनाते हैं कि किसी मॉडल का परिणाम अनुचित, अनुपयुक्त या अधूरा है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि एआई प्रणालियों के निर्णयों में डेटा की सीमाएं और मानवीय पूर्वाग्रह प्रतिबिंबित हो सकते हैं। मायर्स का दृष्टिकोण नैतिकता को अनुपालन की अंतिम जांच तक सीमित नहीं करता बल्कि उसे आरंभिक डिजाइन और रोजमर्रा के नेतृत्व का हिस्सा बनाता है। भविष्य के लिए तैयार संस्था वह होगी जो विविध आवाजों को सुने, लोगों को नई क्षमताएं सीखने का अवसर दे और तकनीकी परिवर्तन के लाभों तथा जोखिमों पर खुला संवाद रखे। इस अर्थ में समावेशन नवाचार की सामाजिक सजावट नहीं, उसकी गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था है। निष्कर्ष में द ताओ ऑफ लीडरशिप उन वरिष्ठ नेताओं, मानव संसाधन और परिवर्तन विशेषज्ञों, शिक्षकों, रणनीति निर्माताओं तथा छात्रों के लिए उपयोगी है जो एआई के प्रभाव को केवल उत्पादकता या स्वचालन के प्रश्न तक सीमित नहीं रखना चाहते। पाठक को यहाँ किसी खास प्लेटफॉर्म का तकनीकी प्रशिक्षण या तुरंत लागू होने वाली चेकलिस्ट से अधिक निर्णय लेने के लिए एक नैतिक और संगठनात्मक दृष्टि मिलती है। इसका व्यावहारिक लाभ यह है कि यह एआई परियोजनाओं को संस्कृति, टीम संरचना, नेतृत्व व्यवहार और सीखने की व्यवस्था के साथ जोड़कर देखने को प्रेरित करती है। फ्यूजन फ्लो जैसा ढांचा इस व्यापक विचार को प्रयोग, सहयोग, नेतृत्व संवेखन और सांस्कृतिक सुदृढ़ीकरण की दिशा देता है। बौद्धिक स्तर पर पुस्तक यह उपयोगी चुनौती देती है कि दक्षता को प्रगति का एकमात्र माप क्यों मान लिया जाए। कई एआई और प्रबंधन पुस्तकें तकनीकी अवसर, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ या स्वचालन की रणनीति पर केंद्रित रहती है। मायर्स की अलग पहचान यह है कि वे ताओवादी विचारों के जरिए विनम्रता, संतुलन, लचीलापन और इंटेग्रिटी को नेतृत्व की वास्तविक क्षमताएं मानते हैं। यह दृष्टिकोण तकनीक विरोधी नहीं है लेकिन तकनीकी समाधानवाद से सावधान करता है। जो पाठक स्पष्ट चरणबद्ध तकनीकी क्रियान्वयन योजना चाहते हैं उन्हें इसे अन्य विशिष्ट एआई संचालन संसाधनों के साथ पढ़ना चाहिए। फिर भी मानव रचनात्मकता और मशीन इंटेलिजेंस के संबंध पर सोचने के लिए यह पुस्तक एक उपयोगी, समकालीन और विशिष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जैक मायर्स, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।